Welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember, we don't address company-specific queries. You can call us on 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do prefix the code 011. I am Vaibhav Jyotsna Srivastav. With me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
शुभ संध्या, नमस्कार। कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज सोमवार है श्रोताओं, और हर सोमवार की तरह हम आपके प्रश्नों को कार्यक्रम में आज शामिल करेंगे। व्यापार जगत हो, अर्थव्यवस्था हो या शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी सवाल हो, इन सवालों को पूछने के लिए आप हमें इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। ये नंबर्स हैं 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106। दिल्ली से जो भी बाहर के श्रोता हैं और मोबाइल से फोन करने वाले जो श्रोता हैं, वो इससे पहले दिल्ली का स्टडी कोड 011 डायल करना न भूलें। आज की खबरों पर चर्चा करने के लिए श्रोताओं और आपके पूछे जाने वाले सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा। शिशिर, मार्केट मंत्र में आपका करजोर अभिनंदन।
आप दोनों को नमस्कार और तमाम श्रोताओं का अभिनंदन।
चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां।
वी बिगिन विद द हेडलाइंस। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस राइज ओवर 1%। सेंसेक्स क्लाइम्स नियरली 800 पॉइंट्स। निफ्टी क्लोजेस अबव 22,900। Major Asian stock markets end in positive territory and global crude oil prices decline.
घरेलू शेयर बाजार में 1% से अधिक की बढ़त। सेंसेक्स लगभग 800 अंक बढ़ा। निफ्टी 22,900 के ऊपर बंद हुआ। आज अधिकांश एशियाई शेयर सूचकांकों का सकारात्मक रुझान रहा और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई।
The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
शिशिर जी हमारे साथ मौजूद हैं। श्रोताओं, हम आपके सारे सवालों को शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि आज पूरे दिन में हमारे भारतीय बाजारों ने कैसा प्रदर्शन किया। देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में 1% से अधिक की बढ़त दर्ज की गई, जिससे लगातार तीसरे सत्र में तेजी आई। सेंसेक्स 787 अंक यानी 74,107 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 255 अंक यानी 22,968 पर रहा। विस्तृत शेयर बाजार में मिड कैप में 1.5% से अधिक और स्मॉल कैप में 1.3% की बढ़त हुई। कारोबार की शुरुआत सकारात्मक रुख के साथ हुई, लेकिन जल्द ही बाजार में मंदी आई और पहले सत्र में मंदड़िये भारी रहे। हालांकि दूसरे सत्र में रिकवरी हुई और बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स लगभग 1,400 अंक उछला, वहीं निफ्टी अंतर्दिवसीय कारोबार में अपने सबसे निचले स्तर से 400 अंक से भी अधिक की बढ़त हासिल की।
Benchmark domestic equity indices climbed over 1% today, extending their winning streak for a third straight session. The Sensex rose 787 points, or 1.07%, to close at 74,107, while Nifty added 255 points, or 1.12%, to settle at 22,968. In the broader market, on the National Stock Exchange, the mid-cap 100 jumped over 1.5%, while the small-cap 100 closed 1.3% higher. The market started the day on a positive note, but soon slipped into the red, trading lower through the first half. However, in the second half, they staged a strong recovery and ended the session on a bullish note. The Sensex bounced back nearly 1,400 points, while the Nifty gained over 400 points from their intraday lows.
सेंसेक्स में शामिल 30 में से 28 कंपनियों के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई। शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में ट्रेंट 7.9%, एक्सिस बैंक लगभग 4% और टाइटन के शेयरों में 3.6% की बढ़ोतरी हुई। वहीं रिलायंस के शेयर 3.4% गिरे और सनफार्मा में मामूली गिरावट दर्ज की गई।
In the Sensex, among the sectoral indices at the BSE, 23 out of 25 sectors ended in the positive territory. Among the top gainers, PSU Bank advanced almost 2.4%, consumer durables rose 2.3%, and realty gained nearly 2.3%. Among the drags, oil and gas as well as energy plummeted over 1%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 3,207 companies advanced, 1,147 declined, and 190 remained unchanged.
जान लेते हैं कि रुपए का हाल कैसा रहा. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर के मुकाबले 4 पैसे मजबूत होकर 93.06 रुपए पर बंद हुआ. डॉलर सूचकांक, जो अन्य 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डॉलर की मजबूती को दर्शाता है, वो दिन के कारोबार में 99.28 पर कारोबार कर रहा था. और शिशिर जी हमारे साथ पहले कॉलर जुड़ गए हैं, ये है उत्तर प्रदेश से विवेक.
हाँ, मार्केट मॉनिटर टीम और एक्सपर्ट को नमस्कार.
नमस्कार.
मैं इक्विटी क्लास में ETF इन्वेस्टेड हूँ. और सर, हमने कल प्रोग्राम में कॉल किया था तो हमारे पास एक लमसम अमाउंट था और उन्होंने हमें गाइड किया है कि हम STP के द्वारा इसको तोड़ के लगाएं. इक्विटी क्लास में तो सर मैं इसको 3 साल में लगाना चाहता हूँ, मगर डेप्ट के लिए जो शॉर्ट ड्यूरेशन फंड है उसमें गाइड करें, क्या मुझे उसमें लमसम लगाना चाहिए या उसमें भी STP के द्वारा ही किसी लिक्विड फंड में रख के तब शॉर्ट ड्यूरेशन में STP के माध्यम से ट्रांसफर करें, इसके लिए गाइड करें सर.
विवेक, आपने खुद ही इसका उत्तर भी दे दिया कि शॉर्ट टर्म में लिक्विड फंड में जाएं और फिर उसके बाद हम उसको STP के जरिए जो है हम डेट फंड में जाएं. ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी है और मुझे लगता है कि अगले रविवार को जब म्यूचुअल फंड से जुड़े विशेषज्ञ आएंगे वो और बेहतर आपको सलाह दे सकते हैं. तो मेरी आपसे एक गुजारिश है कि अगले रविवार को जुड़िए और उनसे एक विशेष सवाल पूछिए. लेकिन अभी के हिसाब से जो आपने कहा वो मुझे लगता है कि बिल्कुल सही रणनीति है.
Our next caller is from Mumbai. We are joined in by Neha. Neha, welcome to the show. Please ask your question.
Yeah, good evening, everyone. I love watching your show and I get a lot of good information regarding investment. I would just like to know, actually, I retired last year and, of course, we have put our money, my husband and I, in various instruments. However, I would also like to know because I had heard that during wartime, the gold prices go up. So I just thought that maybe because of this situation, let me invest in ETF. But I realized that instead of it going up, it's coming down and fluctuating quite rapidly. So I'm just afraid that, I have not put much. But my question is that, I wonder whether this amount of mine that I've invested, will it go up in the future or what should I do about it? Yeah. Thank you so much.
Neha ma'am, it's very difficult to say what will happen in future, but at this moment, because of the dollar is gaining strength, so that is impacting gold prices and that is also impacting the ETF. So there are two ways. I mean, if you have some money and since you have already invested a part of that, so I would say that just invest a small part of that in gold ETF if you have the Demat account. If you do not have the Demat account, then go for the fund of fund. That would be the better thing. But only a small amount, say 10% or 15% of that. Remaining, out of remaining, you can go to the post office schemes which are giving much better return and they are also assured by the government in terms of the principal as well as the interest. And please remember, for the current quarter, there is no change in the interest rate on a small saving scheme. So senior citizen schemes are available. Then, of course, the post office recurring deposit is available. 3-year deposit is available. National saving certificate is available. And if you are not interested in taxation part, then Kisan Vikas Patra is available, which will double your money in 11 or 12 years. So these are the various options. So if I go by the asset allocation, say 40%, say you can put it in the post office, that will give you a hedging, and just 10 to 15% in gold ETF or FOF.
शिशिर, आज बाजार ने अच्छा प्रदर्शन किया है, तो आप इसके पीछे क्या प्रमुख कारणों को गिनते हैं?
देखिए, पिछले 2-3 दिनों से कई तरह की खबरें आ रही हैं और कुछ खबरें ऐसी भी हैं जो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट भी कर रहे हैं, विरोधाभासी भी होती है. एक समय ऐसा आता है कि समझौता हो जाएगा, फिर आता है नहीं, हम फिर हमला करेंगे, फिर अब मंगलवार की समय सीमा है, फिर वो रात को 11 बजे क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. तो इन सबके बीच में बाजार में दो बातें देखने को मिली है. एक कि कच्चे तेल की कीमत में थोड़ी गिरावट आई है और कच्चे तेल की कीमत में गिरावट आने की वजह यह है कि ओपेक प्लस ने यह कहा है कि जैसे ही ये लड़ाई खत्म होगी उसके बाद वो उत्पादन बढ़ाएंगे. तो एक पॉजिटिव इंडिकेशन मिला है और दूसरी बात लड़ाई में भी जो स्थिति है कि वैकल्पिक मार्गों से जो पेट्रोल डीजल माफ कीजिएगा कच्चे तेल लाने की या एलएनजी या फिर दूसरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट लाने की जो सुविधा हुई है तो इन सब का असर हुआ कि आज बाजार में हमने थोड़ी खरीदारी देखी और खासतौर पर अगर आप देखिएगा कि टेक शेयर्स और बैंकिंग शेयर्स में काफी अच्छी खरीदारी हुई।
कल ही
शनिवार को हम इसकी चर्चा भी कर रहे थे कि ये ऐसा शेयर है ऐसा क्षेत्र है जो जहां पर स्थिति थोड़ी बेहतर हमें नजर आ रही है और आज हमने वो देखा तो कारण बहुत स्पष्ट है कच्चे तेल की कीमतें गिरी तो बाजार में थोड़ी सी रौनक आई है लेकिन अनिश्चितता अभी भी बहुत ज्यादा है और ऐसे समय में ये कहना कि बाजार में जो है वो तेजड़ियों की वापसी हो गई क्योंकि आपने मंदड़िए शब्द का इस्तेमाल किया तो मैं तेजड़िए ले आता हूं कि तेजड़ियों की वापसी हो गई ये थोड़ा सा अभी जल्दबाजी है।
Shishir, it will be safe to say that uncertainty is the word of this season. We see all the usual investing principles just taking a bounce, the inversely proportion of the financial markets going up and gold going down, or gold going up and the markets going down has been completely broken. Do you believe that all these chaotic measures or all these conflicts that are going on in the world might just have an effect on the petrodollars or any other currency gaining importance post this conflict scenario? Your views?
Add one more term, which is called petro yuan.
Yes.
And petro yuan is getting good importance after we have seen that when China is having a strong strategic reserve and they are also good in the global supply chain. So petro yuan is getting importance there. Now coming to the first part of your question, considering the uncertainty and considering the basic line that where is the bottom, we do not know where is the bottom. Every day we see this is the bottom line and tomorrow we say no, this is not the bottom.
That's
we may
rock
see
bottom.
A further drop Absolutely. In the equity market. So going by all these uncertainty, entire principles of equity market, or rather I would use the word capital market, has gone heavier. We do not know what should be the strategy. Today, I mean, as we have seen some kind of buying in the equity market, but still nobody is sure that what will happen tomorrow, because it all depends upon what Mr. Trump is going to say later in the evening, and since the tomorrow is the deadline, so there's too much uncertainty there. We do not know what kind of strategy we should adopt or what kind of principle we should go for.
शशिर जी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए फिर आपके पास लौटेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे साथ मुंबई से गोपाल जुड़ रहे हैं। गोपाल जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
जी नमस्कार मैडम,
मेरे
मातृमंडल में नमस्कार। मेरे दो सवाल है, एक तो ये सवाल है कि सर ये जो कोई इक्विटी जो प्राइस गिरती है तो इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है? गिरती है तो ऐसे गिरती है कि मान लीजिए कोई 500 रुपए का शेयर आज से दो साल पहले 500 था, आज वो 100 रुपए भी आ गया, कोई इसके ऊपर निगरानी नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है? ऐसे कई शेयर है जो 100% लुढ़क चुके हैं, वो इन्वेस्टर करे तो क्या करे? पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि सर ये म्यूचुअल फंड में ये ऐसे ये जो न्यूज चैनल्स है जैसे बिजनेस वाले, इसमें बताते हैं आप एवरी ईयर 60,000 का SIP कीजिए, 20 साल में आपके 2 करोड़ हो जाएंगे, 3 करोड़ हो जाएंगे, क्या ये सब ये ख्वाब दिखाते हैं कि सर ये सच्चाई है? सर भाई वाकई होते हैं 2 करोड़ 3 करोड़?
Shishir sir, that is so true. I believe the word that is coming to my mind in Hindi is kash. Kash kuch aisa hota ki wo price kitna gire us pe rokthaam ho paati.
Nahi dekhiye, aisa hai ki हमेशा बाजार में एक सिस्टम होता है जिसको हम लोग कहते हैं अपर सर्किट और लोअर सर्किट। यानी कि एक बाजार में एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि कहां पर सपोर्ट है और कहां पर रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस का मतलब है कि बहुत ज्यादा कोई ऊंचा जा रहा है तो उसको रोका जाए, और सपोर्ट का है कि बहुत ज्यादा नीचा गिर रहा है तो उसको रोका जाए। इसीलिए हमारे पास एक शब्द है जिसको हम लोग कहते हैं सर्किट लेवल। तो एक निश्चित दर पर जो गिरावट होती है किसी एक खास दिन में, जैसे 5% है, उसके बाद एक कदम उठाया जाता है, फिर 10% है, फिर कदम उठाया जाता है, 15% पर कदम उठाया जाता है, 20% पर कदम उठाया जाता है, तो हर दिन का एक स्तर है। अब जो इनका था कि किसी एक शेयर में इतनी गिरावट हो गई, वो एक दिन में जो गिरावट हुई उसके बाद हो सकता है कि अगले दिन फिर गिरावट हुई, फिर उसके अगले दिन फिर गिरावट हुई हो, तो यहां पर कोई उसकी सीमा नहीं होती है। हम लोग जैसे बाजार के नजरिए से कहें तो कहते हैं टेक्निकल सपोर्ट है, रेसिस्टेंस लेवल ये है, सपोर्ट लेवल ये है, लेकिन अभी के दौर में एक एक घटनाक्रम जो है और खास क्षेत्र के लिए जो है वो कोई ना कोई घटनाक्रम होते हैं जो उसके बाजार में शेयर की गति को प्रभावित करते हैं। तो ये कहना कि कहां पे रुकेगा और कहां पे तक जाएगा ये बहुत ही मुश्किल है, और हमारे लिए सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है कि जब बाजार ऊपर जा रहा होता है तो लोग बड़े खुश होते हैं, उसकी चर्चा नहीं करते, लेकिन जब बाजार गिर रहा होता है तो बहुत दुखी हो जाते हैं, और वो स्वाभाविक है, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। और इनका जो दूसरा प्रश्न था कि म्यूचुअल फंड में कोई कहता है कि इतने पैसे लगाओ तो इतने साल में इतना हो जाएगा, आप म्यूचुअल फंड के विज्ञापन की आखिरी पंक्ति पे गौर करिएगा कि म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, कृपया ऑफर दस्तावेज पढ़ करके ही निवेश करें। तो कोई अगर आपसे आकर के कहे कि आपका पैसा दुगना हो जाएगा, तिगना हो जाएगा, कृपया ऐसा ना सोचें, बल्कि पैसा आपका अपना है, थोड़ा सा मेहनत आप भी करिए, सुनी सुनाई बातों पर केवल निवेश करेंगे तो हाथ जलने की आशंका बहुत ज्यादा होती है।
बिल्कुल, और एक बात मैं भी कहूंगा कि चाहे जितने भी विश्लेषकों की आप बात सुने गोपाल जी, और हमारे जितने भी और सुनने वाले हैं, ये इन्वेस्टर एजुकेशन के तौर पर भी है, और जितनी बार भी हमने इतिहास में ऑयल कॉन्फ्लिक्ट्स देखे हैं, चाहे 50s हों, 72 हों, अर्ली 2000s हों, मार्केट्स ने जरूर बाउंस बैक किया है, और भारतीय मार्केट्स खासकर इस वक्त उनके फंडामेंटल स्ट्रांग हैं। तो एकदम से अपना जो विश्वास है वो खोइए मत, मार्केट्स में बने रहिए, लंबे समय के लिए बने रहेंगे तो उसमें मुनाफे की गुंजाइश हो सकता है कि वो जरूर अच्छा हो।
बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले कॉलर हैं बिहार से, इनका नाम है टिंकू। टिंकू जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया सवाल पूछिए।
नमस्ते मैम।
नमस्ते
जी। नमस्कार टिंकू जी, बताइए।
नमस्ते सर।
नमस्ते
सर, मेरा 41 का एज है
जी,
और अभी थोड़ी देर पहले आप बताए थे किसान विकास पत्र पोस्ट ऑफिस का, ये पीपीएस अकाउंट तो उसका कोई उम्र का सीमा नहीं है, पीपीएस अकाउंट तो कोई सीमा उम्र वाले डाल सकता है, किसान पत्र क्या है इसके बारे में जानकारी चाहिए, और एक मेरा सेविंग अकाउंट है ठीक है, और म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में जाना चाहते हैं, क्या सेविंग अकाउंट से पैसे कटवा सकते हैं हर मंथली, या कोई शेयर में नहीं जा सकते, यही जानकारी चाहिए सर।
ये जो पहला आपका प्रश्न है किसान विकास पत्र का, ये डाकघर की एक बचत योजना है, और ये इकलौती योजना है जहां पर सरकार कहती है कि आपका पैसा दुगना होगा, लेकिन इसके लिए आपको 10 साल से ज्यादा का इंतजार करना होगा। 112, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 112 महीने का शायद समय है जिसमें ये पैसा दुगना होता है। हां, इसमें अगर आप सोचेंगे कि टैक्स बचाना है तो ये वो विकल्प नहीं है, उसके लिए आपके लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड है या फिर आपका नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है। अब दूसरा जो आपका प्रश्न है कि आपका सेविंग अकाउंट है, अगर मैं आपकी बात से समझ पा रहा हूं कि बैंक में आपका सेविंग अकाउंट है, आप ये कहते हैं कि क्या वहां से पैसा हम कटवा सकते हैं, तो आप अगर एसआईपी करते हैं, उस एसआईपी में आप मैंडेट देते हैं, बैंक को देते हैं मैंडेट देते हैं कि हर महीने एक तय रकम, मान लीजिए कि 1000 रुपये या 2000 या 5000, जिस इस तरह से आपकी आमदनी है उतनी रकम उस एसआईपी में जाती रहे, इसको डायरेक्ट ट्रांसफर हम लोग कहते हैं, जो कि बैंक और म्यूचुअल फंड के बीच होता है, लेकिन उसके लिए आपको मैंडेट देना पड़ेगा। जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करना शुरू करेंगे वहीं पे आपको मैंडेट देना पड़ेगा, और वो मैंडेट बहुत ही आसान होता है, थोड़ी सी प्रक्रिया होती है जो ऑनलाइन कर लेंगे वो आपका काम जो है वहीं पे हो जाएगा।
बिल्कुल शिशिर जी, भोपाल से हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ रहे हैं शंकर। शंकर जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
नमस्ते, थैंक यू मार्केट मंत्रा टीम। सर, मेरे दो सवाल हैं छोटे, एक इनकम टैक्स को लेके है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है लेकिन पुराने फाइनेंशियल ईयर जो गया है उसका रिटर्न फाइल करने का फॉर्म अभी नहीं आया है, हमें टेक्निकली 90 दिन मिलते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने मिलते हैं, तो क्यों ना उनको ऐसा बोला जाए, इनकम टैक्स में कुछ ऐसी करा जाए कि दे शुड गिव अस ऑलवेज 120 डेज, दैट मीन जिस दिन फॉर्म आएगा उस दिन से 120 डेज काउंट करें, ना कि वो 1 अप्रैल से शुरू हो जाए, पहला सवाल। दूसरा सवाल सर, ये ईरान को लेके है, ये जियो पॉलिटिक्स में क्या आगे जाके क्या सुलझेगा मामला, टोल टैक्स लगेगा ईरान के तेल पे या बाकी तेल पे जो वहां से क्रॉस करेगा, और उसका एक प्रभाव हमारे पर क्या पड़ेगा, या इट प्राइस विल बी एब्जॉर्ब बाय द ओवर सप्लाई ऑफ ऑयल फ्रॉम दीज कंट्रीज, सो दैट देयर विल नॉट बी मच इफेक्ट, सोल्यूशन तो आएगा पर क्या ये टोल टैक्स लगेगा, ये नाका टैक्स लगेगा और मूव पे, थैंक यू।
शंकर जी स्पष्ट कर देना चाहते कि पहली अप्रैल से सातों फॉर्म ITR 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 और ITR V और ITR U. ITR V जो होता है ITR वेरिफिकेशन के लिए, जो आप फॉर्म भरने के बाद अगर मान लीजिए कि ऑनलाइन आप वेरीफाई नहीं करते हैं तो आप सीपीसी बेंगलुरु को भेज दे सकते हैं और आपका फॉर्म, आपका ITR जो है वो वेरीफाई होगा. ITR U जो है वो अपडेटेड रिटर्न के लिए, जिसके लिए 4 साल की समय सीमा जो है वो अब दे दी गई है, यानी कि आपने कोई टैक्स नहीं जमा किया था और बाद में आपको पता चलता है तो वो आप अपडेट कर सकते हैं. तो 1 अप्रैल से ही वो फॉर्म नोटिफाई हो चुका है, तो आपके लिए ये जो 120 दिन का समय सीमा है वो उपलब्ध है. और मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको इंतजार करना चाहिए, क्योंकि आखिरी तिमाही का जो आपने मान लीजिए कहीं पे आपका टीडीएस कटा होगा उसको जमा करने के लिए थोड़ा समय दिया जाता है. तो बेहतर है कि जून में आप अगर रिटर्न दाखिल करें तो आपके लिए बेहतर है. हाँ, आखिरी दिन का इंतजार ना करें जो 31 जुलाई की आमतौर पर समय सीमा होती है. आपका जो दूसरा प्रश्न था कि क्या ईरान जो हॉर्मुज का जो जल डमरू मध्य है वहां से जो जहाज जाएंगे क्या उनके ऊपर कोई टैक्स लगाएगा, तो ईरान की संसद ने एक प्रस्ताव जरूर पारित किया है. हालांकि अभी उस पर अमल हुआ है नहीं हुआ है ये अभी संशय बना हुआ है. कुछ जहाज जो है वो वहां से गुजरे हैं, हमारे जहाज भी वहां से आए हैं, लेकिन वहां की संसद ने वो पारित कर दिया, तो हो सकता है कि वो टैक्स लगना जो है वो शुरू हो जाए, लेकिन अभी उसको लेकर के अनिश्चितता बनी हुई है.
And before we move on in the program, a must announcement for the listeners. In our bilingual live phone-in program, Public Speak today, we will bring an insightful discussion on the new Income Tax Act 2025 with Pitambar Das, Joint Secretary, Central Board of Direct Taxes, CBDT, and Sharad Kohli, Economic Analyst. During the program, listeners can ask questions on the subject. To participate, simply dial the telephone numbers 011-2331-0481, 011-2371-7117, 011-2371-7106 and 011-2331-4444, 9:30 PM onwards today. Alternatively, you can also send your queries via WhatsApp to the number 9289-094044 or post your questions on X with the hashtag AskAIR.
आइए आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं एशिया और यूरोप के बाजार की तरफ. आज अधिकांश एशियाई शेयर सूचकांकों में सकारात्मक रुझान देखने को मिला. दक्षिण कोरिया का कॉस्पी सूचकांक लगभग 1.4%, जापान का निकेई 0.5% से अधिक और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स भी 0.5% बढ़ा. वहीं चीन और हांगकांग सहित अन्य बाजार और यूरोप के बाजार भी अवकाश के कारण बंद रहे. और गुरुग्राम से हमारे साथ आर के सिंह जुड़ रहे हैं. कार्यक्रम में आपका अभिनंदन महोदय, कृपया अपना सवाल पूछिए.
हेलो
जी, अपना सवाल पूछिए.
सर नमस्कार, जैसे कि अभी जो गैस के ऊपर जितनी परेशानी हो रही है मार्केट में बिजनेसमैनों ने अपने जो आइटमों पे 10-15 रुपए के आइटम 20 की कर दी, 100 के आइटम 150 की कर दी. सरकार इसके ऊपर ध्यान दे रही है कि ये इन्होंने जो एकदम से रेट बढ़ा दिए हैं और पब्लिक पे इतना लोड डाल दिया है?
देखिए, बाजार में कीमत तय करने को लेकर के सरकार दखल नहीं देती है. वो कंपनियां अपने स्तर पर जब उनकी लागत बढ़ती है तो वो उसके लिए कीमत बढ़ाती हैं. अब ये आपका एक फैसला है कि आप उनसे सामान या जो भी उनकी सेवाएं हैं वो आप लेते हैं या नहीं लेते हैं.
आइए आगे बढ़ते हैं. पिछले वित्तीय वर्ष में देश के ऑटो खुदरा उद्योग ने 13.3% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की. इसमें 2,96,71,000 इकाइयों की बिक्री हुई. फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स डीलर्स एसोसिएशन के अनुसार बिक्री के आंकड़ों ने उद्योग को 3 करोड़ के वार्षिक आंकड़े के करीब पहुंचा दिया है. दोपहिया वाहनों की बिक्री ने कोविड से पहले के अपने सबसे ऊंचे स्तर को फिर से पा लिया. इनकी बिकवाली 2 करोड़ इकाइयों से अधिक रही. ट्रैक्टरों की बिकवाली भी जोरों शोरों से हुई. अच्छी बारिश, रबी की अच्छी बुवाई और किसानों की बेहतर आय के कारण इनकी बिक्री पहली बार 10 लाख इकाइयों के पार पहुंच गई और इसमें 18.95% की वृद्धि हुई. वाणिज्यिक वाहनों ने भी नए रिकॉर्ड बनाए. इनकी बिक्री 10 लाख से अधिक हुई और इसमें लगभग 12% की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई. तीन पहिया वाहनों ने लगातार 3rd वर्ष रिकॉर्ड बनाया. इसकी बिक्री में 11.68% की वृद्धि दर्ज हुई. अब इस कड़ी में विद्युत वाहनों की हिस्सेदारी 60% से अधिक है.
The government today assured that there is sufficient stock of food grains in the country amid West Asia conflict. Addressing the interministerial briefing on recent developments in West Asia, New Delhi Joint Secretary in the Department of Food and Public Distribution, C. Shikha, said that the country has adequate buffer stock of both wheat and rice. She informed that around 602 lakh metric tons of food stocks are available in the country.
For wheat, we have around 222 LMT, and for rice, we are having around 380 LMT. So both put together, around 602 LMT of food stocks are available with us. Domestic availability of edible oil remains comfortable despite global uncertainties. Imports from key partners has continued steadily, and overall supply remains stable. The government will continue to monitor this closely and will intervene if required.
Joint Secretary, Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma, said that around 50 lakh LPG cylinders are being delivered every day, with online booking reaching a record level of 97%. Ms. Sharma said that delivery authentication through OTP has been widely implemented, now covering nearly 90% of the deliveries.
All the refineries are working at peak capacity, and some of them are working operating at more than 100% also. As far as the LPG production is concerned, there may be a slight fluctuation in the quantity produced because it does depend upon the crude mix. So we are still producing more than 46-47 TMT domestically, and blending as on today it is 20%, and our oil procurement as far as crude is concerned, we have all the cargoes tied up and we have full sufficient supplies of our crude.
आगे बढ़ेंगे श्रोताओं, मगर उससे पहले सोनीपत से हमारे पास कॉल आ रही है दीपक की. दीपक जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए.
नमस्कार मैम.
नमस्कार
मैम, ये जो एप्लीकेशन है न्यूजोन AIR
जी,
इससे मार्केट मंत्रा जो है डेली अपडेट हो जाता है टाइम टू टाइम
जी,
लेकिन जो अभी आपने बताया था 9:30 जो प्रोग्राम आएगा पब्लिक स्पीक वाला
जी,
वो वाला अपडेट ही नहीं हुआ. इस साल में सिर्फ 3 एपिसोड आए हैं उस पर अब तक.
दीपक जी, हो सकता है अभी नहीं हुआ हो, मगर कुछ वक्त और आप इंतजार कीजिए, अभी कुछ देर में हो जाएगा.
दीपक जी, 9:30 पे आप AIR लाइव न्यूज जरूर सुने उस ऐप पर, और आपको वो सभी प्रोग्राम लाइव मिलेंगे और उसके बाद तत्पश्चात उस ऐप पर. Moving on to other stories, global crude oil prices declined today as investors awaited clarity on the status of talks between the US and Iran. Brent crude was trading almost 0.3% down at $108.76 per barrel, while West Texas Intermediate crude was trading 1.3% lower at $110.11 per barrel when reports last came in. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading at 1% up at 1,51,180 rupees per 10 grams, while silver was trading over 1.2% higher at 2,36,300 rupees per kilogram a short while ago.
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून अनुबंध वाला सोना 0.9% बढ़कर 1,51,041 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था, और मई अनुबंध वाली चांदी भी 1.3% बढ़कर 2,35,499 रुपये प्रति किलोग्राम पर थी. शिशिर जी, एक बहुत ही संक्षिप्त आपसे मैं इस पर कमेंट चाहूंगी.
डॉलर जब जब मजबूत होगा सोना उतना ही गिरेगा.
जी बहुत बहुत धन्यवाद शिशिर जी कार्यक्रम में आने के लिए और हमारे तमाम श्रोताओं के जवाब देने के लिए.
एब्सोल्युटली. एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस अगेन. बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसीज राइज ओवर 1%. सेंसेक्स क्लाइम्स नियरली 800 पॉइंट्स. निफ्टी क्लोजेस अबव 22,900. मेजर एशियन स्टॉक मार्केट्स एंड इन पॉजिटिव टेरिटरी. एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस डिक्लाइन. एंड दैट्स इट इन दिस एडिशन ऑफ मार्केट मंत्र. फॉर नाउ नमस्कार.
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.
Oh,